ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಮುನಿ
ನಾದ್ಯಂ ನ ಮಧ್ಯಂ ನ ಅಂತಂ ನ
ద్రవ్యం న క్షేత్రం న కాలో న భావ న శిష్యో గురునాపి హీనం న దీనం గురునాపి హీనం న దీనం చిదానంద రూపం నమో గీత రాగం ఇదం జ్ఞాన రూపం స్వయం తత్వవేదీ న పూర్ణం న శూన్యం న చైత్యం స్వరూపం న చైత్యం స్వరూపం న చాన్యో న భిన్నం న పరమార్థమేకం
रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं और वे हमारे कल्याण में नियुक्त बन सकते हैं यदि हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं तो वे हमारे कल्याण में निमित्त बनते हैं। कोई भी भगवान या पंच परमेश्वर हमारे कल्याण में निमित्त तब बनते हैं जब हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। अगर हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा नहीं है तो वे हमारे कल्याण में निमित्त नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखें। इसलिए जब हम पंच परमेश्वर को अपने कल्याण में निमित्त मान रहे हैं तो फिर हमें उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए। वो ही अपन यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं अपनी श्रद्धा। बुद्धि वृद्धि और उसके बाद चारण वृद्धि और फिर विक्रिया वृद्धि और बल वृद्धि, इन सब वृद्धियों के बारे में अपन ने चर्चा करी। बुद्धि वृद्धि के 18 भेद कहे गए, फिर चारण वृद्धि के अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरह से भेद किए हैं। इसमें तो उन्होंने गंगाचारण, अग्निशिखाचारण, शनि, फल, जल, तंतु, पुष्प, बीज और अंकुर, इन सबको चारण वृद्धि माना है। अन्य आचार्यों ने
और भी प्रकार से वृद्धियों के वर्णन, चारण वृद्धि के वर्णन किए हैं। और आकाश में स्वच्छंद रूप से विहार करना, ये आकाश गामित वृद्धि, ये भी चारण वृद्धि का ही एक भेद है। फिर विक्रिया वृद्धि के अपन ने 4 भेद पढ़ लिए थे। और बल वृद्धि तो 3 ही प्रकार की होती है, मन वचन काय की ऐसी सामर्थ्य कि जिसमें द्वादशांग का अंतर्मूल के अंदर पूरा विचार कर लेने पर भी कोई भी मन के अंदर क्या बोलते हैं उसको थकान महसूस नहीं होती, वचन के द्वारा अंतर मुहूर्त में और पूरे द्वादशांग का पाठ कर लेने पर भी कोई थकान महसूस नहीं होती, शरीर से मासों उपवास, यहां तक कि एक एक वर्ष के उपवास करने पर भी शरीर की सामर्थ्य ज्यों की त्यों बनी रह जाती है, ऐसी रिद्धि प्राप्त हो जाती है, ऐसे मुनि महाराज हमारे कल्याण में निमित्त बने। सकाम रूपित्वशित्वमैश्वम् रूपित्वशित्वमैश्वम् पाकाम्यमर्तर्धिमथाप्तिमाप्ता तथा प्रतिघात गुण प्रधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रम् घोरं ततो घोर पराक्रमस्था ब्रह्मा परम घोर गुणं चरन्तः स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना ये दो श्लोक अपन आज देखेंगे। पहले श्लोक में और जो विक्रिया रिद्धि के शेष भेद रहे थे अणिमा महिमा गरिमा और लघिमा, ये चार अपन ने विक्रिया रिद्धि के भेद पढ़े थे, और भी भेद हैं जिसमें से कह रहे हैं काम रूपित्व नाम की रिद्धि, वशित्व, ईशित्व, प्राकाम्य, अंतर्ध्यान, आप्ति या आप्ति को कहीं कहीं पर प्राप्ति भी लिखा है, और अप्रतिघात रिद्धि, ऐसी रिद्धि से संपन्न मुनि महाराज या ऋषि हमारे कल्याण में निमित्त बने, हम उनके प्रति भी अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। हम रिद्धि की वजह से इंप्रेस नहीं है, हाँ ये ध्यान रखिएगा। आप क्या सोच रहे थे कि मुनि महाराज को रिद्धि प्राप्त हो गई इसलिए हम इंप्रेस हैं, इसलिए हम उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने रत्नत्रय की ऐसी साधना करी है जिससे उनके अंदर परिणामों में इतनी निर्मलता आई कि उनको ये इस तरह की सामर्थ्य प्राप्त हो गई। हम सामर्थ्य से प्रभावित नहीं है, उस सामर्थ्य प्राप्त करने वाले की विशुद्धि से प्रभावित हैं, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, सामर्थ्य तो ऐसी और भी लोगों को प्राप्त हो सकती है, लेकिन उन्होंने जो सामर्थ्य हासिल की है वो आत्मा की कितनी निर्मलता से हासिल की है, हम उसके प्रति उनके गुणानुराग वश या कि उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, ये ध्यान। अब देखिएगा ये सकाम रूपित्व रिद्धि क्या होती है, जिसमें एक साथ अनेक रूप बना लेने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है, उसे कहते हैं सकाम रूपित्व या काम रूपित्व। काम का मतलब यहां पर कामना से लेना, हाँ जैसा चाहा वैसा रूप, और एक साथ जितने बनाना चाहें उतने बना सकते हैं, लेकिन उनको फुर्सत ही नहीं, आत्मा में जो लीन है उसको ये सब सहज रूप से प्राप्त होती हैं पर उनका वो उपयोग नहीं करता, और प्राप्त भी उनको ही होती है जिनको कि इस तरह की आकांक्षा नहीं है। हाँ, जिनको आकांक्षा रहती है उनको तो ये चीजें प्राप्त ही नहीं हो पाती हैं, जिनको कोई आकांक्षा नहीं है उनको ऐसी ऐसी उपलब्धियां प्राप्त हो जाती, जितने रूप चाहें उतने बना सकते, जिस तरह का चाहें उस तरह का बना सकते, ये काम रूपित वशित्व। वशित्व रिद्धि है, सब जीव जिनके वश में हो जाते हैं। वश में हो जाते का मतलब, अच्छा ये बताओ कोई भी किसी को अपने वश में कैसे करता है, या तो बंदूक की नोक पर या फिर अपने प्रेम के माध्यम, हैं उनका प्राणी मात्र के प्रति प्रेम है इसलिए सब उनके वश में है, कोई उनके विरुद्ध नहीं, उनकी निर्मलता इतनी है आत्मा की कि जो देखता है वो कहता ठीक मेरी इनसे कोई शत्रुता नहीं है, ये तो मेरे लिए हितैषी जान पड़ रहे हैं। देखिए सब वश में हो गए कि नहीं, एक जगह लिखा भगवान की स्तुति करते हुए कि देखो तो भगवान कोई किसी को कुछ देता है तो लोग उस वो प्राप्ति की वजह से उस पर श्रद्धा रखते हैं, या कि कोई किसी का बिगाड़ कर सकता इसलिए उससे डरते हैं, इसलिए उसकी आज्ञा मानते हैं, ऐसा तो संसार में बहुत देखा हमने, लेकिन ना आप किसी का बिगाड़ करते ना किसी का कुछ भला करते, फिर भी सारे लोग आपकी आज्ञा में रहते हैं, कैसे आज्ञा में नहीं होते तो फिर अपना बैर विरोध भूलकर आपके पास कैसे बैठते? हम तो देख रहे हैं कि सांप और न्यौला भी बैठा है, जबकि आपने सांप से ये नहीं कहा कि हम तुम्हें मारेंगे अगर तुमने न्यौले से झगड़ा किया, और ना न्यौले से कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने किसी से कुछ नहीं कहा, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे सब आपकी आज्ञा में है, इसलिए तो चुपचाप बैठे हैं आपके समूह शरण में आकर के शांत भाव। ये आपकी अपनी विशेषता है। ये कैसे प्राप्त हुई? ये वशित्व सब जीवों को वश में, सब दुनिया चाहती कि हम सब जीवों को अपने वश में कर लें, हमारे मुताबिक सब संसार चले, लेकिन उसके लिए चाहिए अपने भीतर उतनी निर्मलता। वो निर्मलता जिन मुनि महाराज को प्राप्त हो जाती वही कहलाती उनके वशित्व रिद्धि, ईशित्व रिद्धि। ईशित्व मतलब तीनों लोकों में प्रभुता की सामर्थ्य जिनके भीतर है। वे अपनी प्रभुता नहीं बताते हैं, अपना टेरर क्रिएट नहीं करते हैं जैसे अपन लोग अपना टेरर क्रिएट करते हैं। थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो वैसा टेरर क्रिएट करेंगे कि तुम हमसे ज्यादा कोई है ही नहीं, थोड़ा धन पैसा हो गया तो ऐसा आतंक जिसको कहते हैं सामर्थ्य। यहां पर उनको प्रभुता की सामर्थ्य है, उनका कोई आतंक नहीं है, पर सब जीव उनके लिए अपना ही प्रभु मानते हैं, अपना हितैषी मानते हैं, इसलिए उनके वश में है। और सब जीव उनको अपना प्रभु मानते हैं, अपने कल्याण में निमित्त मानते हैं, इसलिए जो है उनके अंदर ईशित्व भी है। इस तरह ये दूसरी रिद्धि हो गई। प्राकाम्य, प्राकाम्य रिद्धि ऐसी है कि जैसे पानी पर भूमि के समान चल सके और भूमि पर पानी के समान तैर सके। हाँ, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहना चाहिए उनको सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है ऐसा। तो इसको भी अपन आज के समय में और अगर चाहें देखें तो हालांकि बहुत ऐसी चीज है, पर ऐसी सामर्थ्य भी किसी को प्राप्त हो सकती है कि पानी पर भी वो और ऐसे गमन करे जैसे भूमि पर चल रहा है, और जमीन पर भी ऐसे चले जैसे कि जल में चल रहा है। अब विश्वास करने की चीज है, एकदम तो नहीं आएगी। अंतर ध्यान तो अपन समझते हैं कि अभी अभी सामने थे और चाहें तो अपने आप को वहां से गायब कर दिया, वो अंतर ध्यान नाम की विद्धि कहलाती। अदृश्य होने की क्षमता, जैसे अंजन चोर ने एक वो लगा लेता था अंजन, तो वो तो सबको देखता था और उसे कोई नहीं देख पाता था इस तरह। लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं की, जिनको अपनी विशुद्धि के माध्यम से ऐसी सामर्थ्य प्राप्त हो गई उनके शरीर को कोई नहीं देख सकता, लेकिन वे सब जीवों को देख रहे हैं, इस तरह की सामर्थ्य भी है। फिर कहते हैं इसमें आप्ति या कि प्राप्ति, जमीन पर बैठे बैठे चाहे तो सूर्य के विमान को उंगली से छूना चाहे तो छू सकते हैं। हाँ, सूर्य चंद्र के विमानों को ऐसे उंगली से यहीं बैठे बैठे छूना चाहे, जिस चीज को मानो सोतर पर्वत को छूना चाहे तो वहां तक हाथ चला जाएगा और वो उसको छू लेंगे। ये इस तरह की सामर्थ्य प्राप्त हो गई, इसको बोलते हैं प्राप्ति नाम की रिद्धि। और अब प्रतिघात, पर्वत में से भी गुजर के चले जाए ऐसा आघात शरीर हो गया, ऐसी सामर्थ्य प्राप्त हो गई। वज्र से भी जिनका शरीर नहीं रुकता है, ये सब आत्मा की निर्मल अवस्था प्राप्त होने पर सहज हैं। ये जितनी भी चीजें अपन देख रहे हैं कि ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, हमारे और आपके बस की नहीं है, साधारण लोगों की, लेकिन वो असाधारणता कैसे आई है? सिर्फ परिणामों की निर्मलता से। जब परिणामों की निर्मलता से ये चीजें जो हमारे लिए दुर्लभ हैं वो मिल सकती हैं, तो क्यों ना हम अपने परिणामों की निर्मलता से इन चीजों की अपेक्षा वो प्राप्त कर लें जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ और शेष नहीं, मोक्ष पद प्राप्त कर लें। वास्तव में तो इन रिद्धियों को पढ़ते समय यही भाव होना चाहिए कि इनको प्राप्त करना उद्देश्य नहीं, हालांकि ये भी बड़ी चमत्कारिक मालूम पड़ रही है, लेकिन चित्त चमत्कार से बड़ा कोई और चमत्कार नहीं है। अपने आत्मा को प्राप्त कर लेना वही वास्तविक है, और ये रिद्धियां तो सहज रूप से और रास्ते में जैसे मिलती चली जाती हैं वैसी ही हैं। फिर एक होती है तप रिद्धि, उसकी क्या विशेषता है वो आगे वाले श्लोक में कह रहे हैं। दीप्त तप नाम की रिद्धि, इनके अलग अलग लक्षण हैं। महा उपवास करने पर भी, महीनों महीनों के उपवास करने पर भी जिनका धीरे धीरे मन वचन काय का बल बढ़ता चला जाता है, शरीर और अधिक उज्जवल और अधिक निर्मल चमकदार हो जाता है, वो कहलाती दीप्त तप रिद्धि। और इतना ही नहीं, उसमें लिखा कि जिनके शरीर की दीप्ति निरंतर बढ़ती है, इतना ही नहीं जिनके मुख से कमल के समान सुगंध फैलना शुरू हो जाती है। जबकि होता यह है कि अगर दो चार दिन एक ही दिन उपवास कर ले तो अपने मुंह से दुर्गंध आना शुरू हो जाएगी है, और उनके लिए ये रिद्धि के प्रभाव से वे जैसे जैसे उपवास इत्यादि करते हैं सारे शरीर से और विशेष रूप से मुख से सुगंध आना शुरू हो जाती और सारा शरीर और अधिक सुंदर मालूम पड़ने लगता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर तप्त तप रिद्धि, जैसे कि लिख रहे हैं कि लोहे की कड़ाई में गिरे हुए जल के कण एक क्षण में, जैसे कि तवे पर एक बूंद डालो तो खत्म तुरंत, ठीक इसी तरह जिस रिद्धि के प्रभाव से तप्त तप रिद्धि के प्रभाव से वो जो भी आहार डालते हैं वो सब भीतर जाकर के और मल मूत्र से रहित उसका वेस्ट होता ही नहीं, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है अंदर जाकर के, पूरा का पूरा शरीर में एब्जॉर्ब होता है, ऐसी रिद्धि तप के द्वारा प्राप्त हो जाती है, उसको कहते हैं तप्त तप रिद्धि। और फिर महोग्र तप या कि महातप रिद्धि वो कहलाती है। एक विशेष प्रकार का तप होता जिसमें एक उपवास एक आहार, दो उपवास एक आहार, तीन उपवास एक आहार, चार उपवास, इस तरह से बढ़ते चले जाते। सिंह निष्क्रीड़ित नाम का व्रत है और पहले 15 उपवास तक पहुंचते हैं, फिर उसके बाद एक आहार, फिर 14 उपवास, फिर एक आहार, फिर 13 उपवास, फिर एक आहार, फिर 12 उपवास। ऐसा महातप करने की सामर्थ्य जिनको प्राप्त हो जाती वो रिद्धि कहलाती है महोग्र या कि महातप रिद्धि। फिर घोर तप, घोरम तपोचा, घोर तप वो कहलाती है जिसमें कि विभिन्न प्रकार के भीषण रोगों से युक्त है देह। देखना किसी असाता के उदय से जिनकी देह तो हो गई है रुग्ण, लेकिन इसके बावजूद भी और उस रिद्धि के प्रभाव से वे विभिन्न प्रकार के तप करते हैं जिसमें कि अनशन अमोदर इत्यादि विभिन्न काय क्लेश महीनों महीनों एक ही स्थान पर ध्यान में लीन रह जाते हैं, जबकि व्याधियां उनके शरीर को घेरे हुए हैं, फिर भी वे उन्हें कोई प्रभाव नहीं डाल पाती हैं उस रिद्धि के। और भी लिखा हुआ है कि ऐसे भयानक स्थान में जहां की कोई व्यक्ति जा भी नहीं सकता, वहां पर निर्भय होकर के और आसपास सिंह इत्यादि विचरण कर रहे हैं, फिर भी वे शांत भाव से आत्मस्थ रहते हैं, वो कहलाती घोर तप रिद्धि। इस तरह की सामर्थ्य उनको प्राप्त हो जाती, भयभीत नहीं होती। और फिर कहते घोर पराक्रम रिद्धि, जिससे कि जो तप और योग हैं वो निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। पहले दीक्षा के समय अगर दो उपवास किए हैं तो जीवन भर अब दो उपवास के बाद एक आहार, फिर दो उपवास, फिर एक आहार, फिर दो उपवास, और दूसरे प्रकार से दो उपवास पूर्वक आहार लिया था, अब अगले दिन चार उपवास पूर्वक आहार, फिर आठ उपवास पूर्वक, बढ़ते ही चले जाएंगे। अब बताइए आप इस तरह की रिद्धि के सामर्थ्य से अब कैलकुलेशन करें, कई बार ऐसा लगता है अब थोड़ी संख्या तक तो बढ़ेगी, अब दो उपवास से चार हो गए, चार से आठ हो गए, 16 हो गए, कितने होते चले जाएंगे, फिर तो 4 महीने उपवास और एक आहार, 6 महीने उपवास और एक आहार, इस तरह के बढ़ते बढ़ते जो है ऐसा जीवन भर जिनके तप बढ़ती ही चले जाते हैं, तब उसको कहते घोर पराक्रम। इतना बल उनके भीतर होता है कि वो इन सबको सहज रूप से कर लेते हैं। इस तरह से ये एक और रिद्धि बची, इसमें कौन सी, अघोर ब्रह्मचरी रिद्धि, जिसमें कि वे अखंड ब्रह्मचरी को धारण करते हैं, और इतना ही नहीं उस रिद्धि के प्रभाव से उनके आसपास कहीं कोई भी दुखद घटनाएं घटित नहीं होती, कोई भयानक जीव इत्यादि नहीं आते, कोई भी जहां आक्रमण इत्यादि या और भी जो ईति जिसको अपन कहते हैं अतिवृष्टि अनावृष्टि, कुछ भी नहीं होता, सुकाल हो जाता है जिनकी उस रिद्धि के प्रभाव से। अन्य जीवों के लिए भी उनके आसपास का वातावरण बहुत सुखद हो जाता, वो कहलाती है घोर ब्रह्मचरी रिद्धि। इस तरह से अपन ने इतनी चर्चा इन रिद्धियों के बारे में करी। अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, वो अपन दो श्लोक बाद में करेंगे। इस तरह ये सभी रिद्धिधारी मुनि महाराज, इनके हमें दर्शन हो ऐसी भावना भाए, और दर्शन नहीं हुए तो कम से कम इनका स्मरण करके हम अपने परिणाम भी इनके जैसे अच्छे बना सकें, ऐसी भावना तो भानी चाहिए। ये बच्चे लोगों ने प्रश्न लिख करके छोटे छोटे रख दिए, एक आचार्य श्री का भजन सुना दो आप, फिर एक क्या है ज्ञान के कितने भेद होते हैं, सीख रहे हैं वो लिखना, लिखने में खूब गलतियां हैं, देखो कितने भेद लिखा है, भेद लिखना भैया, पाफा बाभा बा से काम नहीं चलेगा, ज्ञान के कित नाम एक ही मात्रा भूल गए, कितन लिखा हुआ है, फिर बा में एक ही मात्रा तो वो काट दी उसको, गड़बड़ हो गई, इसलिए फिर सीख रहे हैं बच्चे लिखना, ठीक है अच्छी बात, तुम्हारा प्रश्न हमने पढ़ के सुना दिया है, इसलिए तुम्हारा लिखना, अब इनको देखते हैं, सबने बंद बंद करके रखे हैं क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्न एक साथ उठते हैं और कुछ निश्चित नहीं कर पाते हैं, तो क्या करना चाहिए जिससे मन को शांति मिले, नमोकार मंत्र का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि विशुद्धि कम होने की वजह से ज्ञान का स्वरूप सम भी कम हो जाता है, और प्रश्न तो बहुत से उठते हैं लेकिन उनका समाधान मन में नहीं आता, और अगर थोड़ी देर को उस समाधान से हमें समाधान नहीं आ रहा है, प्रश्न बहुत उठ रहे हैं मन में, तो एक स्ट्रेस मन के ऊपर पड़ता है, एक तनाव मन में आता है कि कैसे इनका आंसर पाऊं, उस समय अपन प्रयत्न भी करेंगे तो प्रयत्न सफल नहीं होगा, उस समय तो पंच नमस्कार स्मरण करें, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें, धीरे धीरे विशुद्धि बढ़ेगी और अगले क्षण आसानी से उनके उत्तर आना शुरू हो जाएंगे, या फिर साधु जनों की संगति करें। हाँ, हम आपको एक आध बार सुना चुके हैं कि जब सनसी में और मैं छुल्लक था तो बहुत सारे पढ़ते थे, तो बहुत उतना अल्प ज्ञान, अभी भी अल्प ही है ज्ञान, पर बहुत प्रश्न उठते थे मन के अंदर, और मन होता था कि आचार्य श्री से पूछें, तो एक बार लिख लिए 10-15 क्वेश्चन और लिख करके गए आचार्य श्री के पास, तो आचार्य श्री अपने अध्ययन में लगे थे, तो अपन दूर बैठ गए कि जब उनका पूरा होगा तो वो देख लेंगे तो अपन पूछ लेंगे, तो थोड़ी देर बैठे 10 मिनट और फिर प्रश्न पढ़ते रहे, और पढ़ते पढ़ते और प्रश्न आचार्य श्री के पास बैठे बैठे ऐसा लगा कि इन सबके उत्तर तो मुझे आते हैं, मुझे काहे को पूछना बेकार में, परेशान करो महाराज को, सो नमस्तु करके जाने लगे, तो आचार्य श्री बोले क्यों क्या बात है, उन्होंने देखा कि मुझे देर हो रही है इसलिए शायद उठ के चला गया कि अब फिर आएंगे, क्यों क्या बात है, उन्होंने कहा कुछ नहीं, कुछ प्रश्न पूछना थे, तो बैठो मैं अभी बताता हूँ, नहीं मुझे तो लग रहा है कि मुझे सारे प्रश्न के उत्तर मिल गए, तो हंसने लगे, आशीर्वाद दे दिया, अपन चले गए। ये क्या चीज है, हमें विशुद्धि वाले व्यक्तियों के सानिध्य में बैठने अकेले से हमारी विशुद्धि बढ़ती है और हमारे ज्ञान का स्वरूपसम हो जाता है, लेकिन आज तो उल्टा ही मामला है, हैं? अपन तो अपने ही प्रश्न और अपने को उलझाने के लिए, और इतने नहीं प्रश्न पूछ करके सामने वाले को भी उलझन में डाल देंगे, ऐसा तो अपना ज्ञान हो गया, जबकि लिखा है कि प्रश्नः प्रश्नः स्वयं प्रश्नः परिवर्ते मुहूर्ते उत्तर जायते, पूछो पूछो अपने आप से पूछो, ये प्रश्न तुम्हारे भीतर अगले क्षण उत्तर बन करके स्वयं आ जाएंगे, लेकिन ये इसके लिए बहुत विशुद्धि चाहिए, अपने आप से पूछ के अपने भीतर ही उसका समाधान, आत्मा में ही उसका समाधान है, दूसरा तो सिर्फ निमित्त बनेगा, हाँ कोई बहुशुद्धवान है तो वो निमित्त बनेगा, ग्रंथ भी निमित्त बनेंगे, पर आएगा समाधान हमारे ही भीतर, ये बाकी तो सब बाह्य निमित्त है, हमारी अपनी विशुद्धि बढ़ेगी, ज्ञान का स्वरूप सम होगा तब समाधान मिलेगा, कोई कितने भी समाधान समझा देवे जब तक हमारा खुद का नहीं है स्वरूप सम तो कोई मानेगी नहीं, मानने को तैयार नहीं, विशुद्धि चाहिए समाधान पाने के लिए, इसलिए वो कोशिश करनी चाहिए। जैन धर्म की प्रथम पुस्तक कब और किसके द्वारा लिखी गई, भैया ये तो अपन एकदम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि प्रथम पुस्तक पर ऐसा सामान्य रूप से जो है वो प्रचलन में तो यही है कि सबसे पहले और पुरुषोत्तम भूतपली आचार्य ने, क्योंकि धर्मसेन स्वामी तक तो सब कुछ श्रुति के माध्यम से उनको ज्ञान था, इसलिए जब तक स्मरण रहता है तब तक लिपिबद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, फिर बाद में जब स्मृति भंग होने लगी और स्मरण में नहीं रहने लगा ज्ञान, तो फिर उन्होंने दो शिष्यों को जिनकी अच्छी स्मृति थी उनको सारा आगम का ज्ञान दिया, और फिर उन्होंने 180 सूत्रों में और षटखंड आगम के पहले नंबर लिपिबद्ध किया, ऐसा भैया मुझे इतनी जानकारी है। इससे ज़्यादा जानकारी और मैं पता करके बताऊंगा कि किसको हम पहली पुस्तक माने। अभी तक तो 180 सूत्रों की जो षटकंड आगम है उसी को माना गया है। जब हम मंदिर में अभिषेक करते हैं तो हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं कि क्या होगा भगवान के दर्शन और अभिषेक करने से, ठीक है, मतलब क्या फायदा होने वाला, ये क्या है, अपन लोग व्यापारी हैं, नफा नुकसान का अपन को बहुत हो रहता है, आदत नहीं है, वो सुनार है कि जो कर रहे हैं तो दो पैसे। मैंने एक बार तो ये हुआ कि उनने कहा कि सुनो ऐसे कर्म करोगे तो कहां जाओगे, उनने कहा अपन को इससे कोई मतलब नहीं, कहीं भी जाए कि तो क्या नरक चले जाओगे, कि तो उतने भी दो पैसा को अगर इंतजाम हो तो अपन उतने भी जाओगे, अपनी दुकान चलो चाहिए तो दो पैसा को अपन को मुनाफा हो तो नरक में भी चले जाएंगे, इतनी जो है नफा नुकसान की। अरे भैया नफा नुकसान तो संसार वाला सोचता, लाभ हानि का झगड़ा मिट जाता है, यही दर्शन से फायदा है। संसार लाभ हानि जय पराजय सुख दुख का नाम ही संसार है, और जिनके सामने आकर के क्या सुख दुख, क्या लाभ हानि, क्या जय पराजय परिणाम क्षण भर को स्थिर हो गए, इससे बड़ा क्या लाभ हो सकता है, इसी को आप लाभ कहो। हम तो यही उत्तर देते कि भगवान के दर्शन पूजन अभिषेक से क्या लाभ होता है ऐसा पूछो तो हम तो यही कहेंगे कि लाभ हानि का झगड़ा ही मिट जाता है उतनी देर के लिए, नहीं तो सारा संसार उसी लाभ हानि राग द्वेष सुख दुख में पड़ा हुआ है। हम उतनी देर को कम से कम निर्विकल्प हो जाते कि कोई मतलब नहीं, लाभ हो तो हानि हो तो, हम तो भगवान के सामने खड़े हैं उनकी पूजा पाठ। तो इसलिए अपन को दर्शन अभिषेक करते समय अगर मन में ऐसे विचार आते हैं कि क्या होगा इसके, क्या लाभ मिलने वाला, तो फौरन अपने मन में ये भी आना चाहिए कि देखो मेरे परिणाम निर्मल हुए, यही तो मुझे लाभ हुआ, संसार के प्रपंच से बच गए, राग द्वेष से थोड़ी देर को बच गए, ये क्या कमती लाभ है, अब इससे ज्यादा और कौन सा लाभ हम चाहते हैं, हम सांसारिक लाभ क्यों चाहें, ये इतना बड़ा लाभ मिल गया, नियम दिला दीजिए, मतलब ऐसा कि नियम हम लेते हैं और टूट जाता होगा, ऐसा लिखना चाह रहे होंगे, पूरा नहीं लिख पाए, देखना ऐसा क्यों होता है कि मेरे साथ ऐसा होता है कि पहले भी हो चुका है, मुझे एक नियम दिलवा दीजिए, अब इससे क्या निकालें अर्थ, है ना, कुछ अर्थ, वो बीच में एक सेंटेंस लिखना चाह रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है कि मैं जब नियम लेता हूं तो टूट जाता है, ऐसा पहले भी हो चुका मुझे, लेकिन आप एक नियम दिलवा दीजिएगा, ऐसा कुछ होना चाहिए प्रश्न। देखो इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार लेना चाहिए नियम, जिससे कि उसे हम निभा सकें, जिसके लेने के बाद हमें निर्वाह करने में संक्लेश ना हो। अपनी शक्ति से ज्यादा व्रत ले लेंगे तो निर्वाह नहीं होगा, उल्टा संक्लेश होगा, नियम टूट जाएगा और कॉन्फिडेंस लूज होएगा कि हमसे नहीं होता। और अगर अपनी सामर्थ्य से आधा ले लिया, आचार्य श्री कहते हैं कि दो उपवास की सामर्थ्य है तो एक कर लेना चाहिए, तीन नहीं करना चाहिए, नहीं तो कभी नहीं कर पाओगे। फिर अपनी शक्ति को पहले विचार के और फिर उसके बाद छोटे छोटे से नियम लेके अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना और फिर उसके बाद बड़ा नियम ले लेना चाहिए, तो फिर आप नहीं थकेंगे। तो आप ले लेना हमसे नियम, एक नियम दिलवा दीजिएगा, आप सोच लो हम दे देंगे, हमारे पास है ही नहीं देने के लिए, हम आशीर्वाद भर देते, नियम हम कहाँ से लाएंगे देने के लिए, नियम तो आप ही बता दो कि हम ये लेना चाह रहे हैं, अपनी बुद्धि में आता नहीं कि कौन सा नियम दे दें, आप जो नियम लेना चाहें उसके लिए आशीर्वाद दे देंगे। समूह शरण में केवली भगवान भी जाते हैं क्या, बहुत सी पुस्तकों में लिखा है कि जाते हैं, तो केवल ज्ञान के बाद उसकी क्या जरूरत है, देखो तीर्थंकर के द्वारा ही धर्म चलता है, सामान्य केवली के द्वारा धर्म नहीं चलता, तीर्थंकर केवली से ही सारा शासन सारा धर्म का काम चलता है, इसलिए उनकी मौनोपाली है। हाँ तीर्थंकर का समोषण लगा है तो हजारों की संख्या में केवल ज्ञानी वहां बैठे रहेंगे, वो उनकी शोभा है। हाँ सभी रिद्धिधारी गणधर स्वयं जो है 63 रिद्धि के धारण करने वाले, एकमात्र केवल ज्ञान शेष है, ऐसे महान महान आत्मा उनके चरणों में वहां बैठे, जबकि सब एक बराबर है, और जो केवली हैं देवी उत्तर केवल ज्ञान के धारी हैं, जितने तीर्थंकर केवली हैं समोशरण में उनको भी उत्तर केवल ज्ञान है, कोई कमी नहीं है, लेकिन चलेगी किसकी, चलेगी तीर्थंकर की। हाँ उस समय केवली भगवान चुपचाप बैठे रहेंगे, कोई उनके पास जाएगा ही नहीं कि केवली भगवान आ रहे हैं, तो सब तीर्थंकर के पास जाएंगे, ये उनका प्रभाव है विशेष, ये वैशिष्ट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूर्व जीवन में प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाई थी। अपना कल्याण तो किया ही, अपने द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण हो, ये उनकी विशेषता है, जिससे कि समूह शरण में बैठ के सबको वे धर्मोपदेश देते हैं और अन्य केवली भी उनके निकट बैठे रहते हैं। आप प्रवचन देते हैं तो फिर आपको जो है वो बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं, तो आंसू आ जाते हैं, तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। मेरे ठीक है, मेरे मन में भी आता, मेरे मन में भी आता। देखो, रोना दो प्रकार का, दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेम नान्यात् परोभय स्थानान् असत् वेद्यस्य। अपने भोग विलास की सामग्री छिन जाने पर, या कि शरीर में कोई व्याधि हो जाने पर, या कि मन में कोई बात का संक्लेश होने पर, जो हम दुख और महसूस करते हैं और रुदन करते हैं, आंसुओं से आंसू आ जाते हैं, वो सब असाता वेदनी और पाप के बंध का कारण है। लेकिन दूसरे के दुख को देख कर या सुन करके या विचार करने मात्र से दूसरे के दुख को सहन नहीं कर पाते और आंसू आ जाते हैं, या कि हमारे पास आज कितनी थोड़ी सी क्षमता है, आज कोई तीर्थंकर का सानिध्य नहीं है और मैं कितना अल्पज्ञ हूँ, इस तरह के विचार करने से जो आंसू आते हैं उनमें तो पुण्य का ही बंध होता है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि अगर ऐसी स्थिति बनती, बहुत दुर्लभ है ऐसा होना, है कि नहीं, अपन को अपनी सुख सुविधा की सामग्री छीनने पर तो खूब रोना आता है। कभी इस बात अपनी बिटिया को भेजने के बाद रात 12 बजे आंख खुल जाती तो दो आंसू गिर जाते, कभी रात 12 बजे आंख खुलने पर इस बात के लिए आंसू गिरे कि आज कोई तीर्थंकर नहीं है, आज मुझे धर्म का सच्चा उपदेश देने के लिए कोई नहीं है, आज मैं साक्षात भगवान के दर्शन नहीं कर सकता हूं, कितनी कमी महसूस कर रहा हूं, इसमें कभी रोए? मेरा धर्म ध्यान छिन गया, इसके लिए कभी रोए? आज मंदिर नहीं जा पाए, इस बात का मुझे रोना आ रहा है? नहीं, आता ही नहीं। आज भोजन ठीक से नहीं मिला, इस बात का रोना तो आया, सबको आता है, हमारे मन की चीज नहीं मिली भैया। इसलिए दोनों में बहुत फर्क है, वीपिंग की क्वालिटीज अलग अलग हैं, जैसे परिणाम है। अगर विशुद्धि है अंतरंग में तब भी आंसू आ सकते हैं, लेकिन संक्लेश पूर्वक अगर आंसू आते हैं तो वो पाप का बंध का कारण है और परिणाम और निर्मल हो जाते हैं। है? संत हृदय नवनीत समाना, ऐसा लिखा तुलसीदास जी ने, कि जो जितना अधिक संवेदनशील होगा उसकी विशुद्धि उतनी ही अधिक बढ़ती चली जाएगी, और विशुद्धि बढ़ने पर कैसे हो जाता नवनीत के समान, कठोर भी है और मुलायम भी, मुलायम इतना कि दूसरे के संताप से पिघल जाता है, और कठोर इतना कि तलवार से भी काटो तो कटता नहीं। हाँ, नवनीत देख लो, चलाओ तलवार, देखें उसको, दो पीस कर दो उसके, कर ही नहीं पाएंगे दो पीस, इतना तो कठोर है और नरम कितना है कि दूसरे के संताप से क्षण भर में पिघल जाता है। तो ये ऐसी ऐसा विशेषण दिया हुआ है, वैसा बनना तो बहुत कठिन है। महाराज, हमें दही खाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि एक चीज, एक प्रश्न फिर और, हमें घास पर क्यों नहीं चलना चाहिए? दही अपन को मर्यादा का खाना चाहिए, दही से जमाया हुआ, जो डायरेक्ट दही बनाते हैं अपन दही डाल करके, वो दही अपने यहाँ पर खाने योग्य नहीं माना, क्योंकि उसमें मर्यादा ज़्यादा हो गई। जो अपन किसी और सिक्का वगैरह या कि नारियल की गिरी उसके ऊपर का छिलका, उसको दही में डाल के सुखा करके धो पहुँच के रख लेते हैं, उससे जो जमाते हैं वो मर्यादा का दही माना जाता, और जो डायरेक्ट दही डाल करके दूध में जमाया जाता उसमें मर्यादा से ज़्यादा होने से अपन उसको नहीं खाते हैं। 24 घंटे की मर्यादा है, उतने के बीच बीच में दही खाने योग्य है। मुनि महाराज भी दही और छाछ लेते हैं, हमें घास पर क्यों नहीं चलना चाहिए? भैया, वो जो घास इतनी इतनी सी दिख रही है तो वो कितने जीव हैं उसमें, उस घास में अनंत जीव राशि, थोड़ी मोड़ी नहीं है, उस घास के आश्रित भी है, और उस वो जो घास है वो अपने आप में प्रत्येक जीव का शरीर है, और कितने जीव हैं, असंख्यात जीव उसमें हैं, और उसके आश्रित जो निगोदिया जीव हैं भी अनंत अनंत हैं। आपने तो झट से पैर रख दिया और वो कुचल गई घास। हमने एक घटना नहीं सुनाई थी, किसी कवि ने कल्पना करी है कि जब भगवान महावीर स्वामी अपनी माँ के साथ एक लॉन में पार्क में और जा रहे थे तो वो वहीं गेट पर रुक गए। माँ भीतर चली गई, 3-4 कदम भीतर गई थी, उतने में देखा कि कहाँ चला गया वर्धमान। तो पीछे देखा तो वो तो बालक भगवान बाहर ही खड़े। अरे आओ ना बेटे। नहीं माँ, तुम जब नन्ही नन्ही धूप को कुचलती हुई चलती हो तो मुझे बहुत दुख होता। अरे बाहर आकर के देखा तो उनके आंसू आ रहे थे। क्या हो गया, किसी ने कुछ कह दिया? नहीं, तुमने उन जीवों को क्षति पहुंचाई, इससे मुझे दुख है। माँ मेरी तो पूरी पीठ छिल गई। और माँ ने जब उनके कपड़े उघाड़ करके पीठ पर देखा तो जितने पैर उन्होंने धूप पर रखे थे उतने ही 3-4 पैर उनकी पीठ पर बने थे। ये एक प्रतीक है, ऐसा हुआ था ऐसा नहीं मान लेना आप, लेकिन ये प्रतीक है कि इतनी संवेदनशीलता है जिसके भीतर वो काय को रखेगा, रख ही नहीं सकता। जिसके भीतर ये लगता है कि जीव मर जाएंगे, अरे कोई अपने ऊपर पैर रखे तो कैसा लगेगा, वो भी उनमें भी तो जीवन है तो उनके ऊपर पैर क्यों रखें। एक व्यक्ति कह रहे थे हमसे कि आजकल तो रात में, दिन में भी नहीं, रात में बिछाई भी उसी पर हो जाती और सारा फंक्शन उसी पर होता है। प्रवचन तो छोड़ो, प्रवचन भी जो है लान में और बड़े, हमने तो उधर देखा महावीर जी वगैरह में, वहां पर जो है फर्श से उन्होंने बिछा दी बिछाई और मंच बन गया और उसी में हाँ। तो ये जो है ये ठीक नहीं। शादी ब्याह में भी उसके ऊपर ही सारा कुछ, खाना पीना सब उसी में करते हैं। अपने सुख के लिए दूसरे को दुख में डालना, अपने लिए दुख का उपाय करना है। अभी नहीं मिलेगा, बाद को मिलेगा उसका फल, ऐसा तो है नहीं। भक्तांबर कैसे याद करें संस्कृत में, पहले पढ़ना सीख लो फिर बाद में हम बता देंगे। ठीक ठीक पढ़ना और 1 महीने तक रोज पाठ करने का नियम ले लो, याद हो जाएगा। 4-4 श्लोक रट्टा लगाने की कोशिश नहीं करना, सबसे अच्छा उपाय है। हाँ नहीं तो 4 श्लोक लेके बैठ गए याद करते हैं, रट रहे हैं उसको, रटना बोलते रिपीटेशन, बार 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 घोकना, उससे बढ़िया है कि 1 महीने तक रोज पाठ करेंगे शुद्ध, तो आपको 1 महीने के बाद आसानी से याद हो जाएगा। मुझे सकल गे की बिनती याद नहीं होती थी, हाँ हाँ अच्छी लगती थी, लेकिन फिर हमने तय किया कि अपन तो पाठ करेंगे। आचार्य महाराज ने कहा कि आमनाय नाम का स्वाध्याय करो, रोज पढ़ने का नियम ले लो, अपने आप कंठस्थ हो जाएगा। और वाकई में जो है, और 2 महीने लगे रोज, जहाँ इसमें कहाँ भोपाल में 97 में रोज सुबह से पाठ करने का नियम ले लिया, 5 मिनट लगते सकल गे की बिनती, और बस वो कंठ में अपने आप स्मरण में, और रोज दोहराते रहना चीनी तो भूल जाएंगे फिर। हाँ पाठ अगर करना है तो रोज पाठ करना, याद हो जाने के बाद भी बीच बीच में बार बार रिवाइज करते रहना तो याद बना रहेगा, इस तरह कर सकते हैं। महाराज हमारे घर में माता पिता वर्षों से शास्त्र पढ़ते हैं, मुझे भी आपके और उनके जैसे बनना है, तो मैं क्या करूं, मुझे एक ऐसा नियम दे दीजिएगा कि बहुत समय तक ले सकूं। यही नियम ले लो, अगर देखो माता पिता अगर शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं और उनके परिणाम बहुत अच्छे हैं, तुम्हें अच्छा लगता है, तो तुम भी वही नियम लो कि हम रोज कोई ना कोई धर्म की चीज 4 लाइन पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे। और देखो दुनिया भर का कितना पढ़ते हैं अपन, स्कूल का पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, तो उसी में 5 मिनट हम बैठेंगे 9 बार नमोकार पढ़ के, और फिर मेरी भावना पढ़ेंगे, 12 भावना पढ़ेंगे, और क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारी और भी बिनती हैं, स्तुति है, दर्शन पाठ है, ये सब पढ़ेंगे, तो उससे अपना धीरे धीरे ज्ञान भी बढ़ेगा और निर्मलता भी आएगी। आपके और उनके जैसा बनना चाह रहा हूँ, पहले उनके जैसे बन जाओ तो फिर हमारे जैसे बनने में कोई देर नहीं लगेगी, है कि नहीं? सबसे अच्छा तरीका है। हाँ एकदम हमारे जैसे बनोगे तो फिर उनके जैसे नहीं बन पाओगे बाद में, इसलिए पहले उनके जैसे बन जाओ, क्योंकि वो इतना स्वाध्याय करते हैं। मुनि महाराज के लिए लिखा है दीक्षा लेने से पहले जिनको आगम का अभ्यास हो, संसार से उदासीनता हो और परिचय सहन करने की सामर्थ्य हो तो दीक्षा ले लेते हैं, तो अपन वो तैयारी करो, आगम का अभ्यास करो और फिर संसार की वास्तविकता को समझो, उससे उदासीन हो और सहन शक्ति बढ़ाओ, बढ़ती चली जाएगी, तब फिर जो है मुनि महाराज बन जाना। भावना बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन थोड़ा सा अभी और पढ़ लो, फिर हम एक और, अच्छा फिर उसके बाद भी कोई और बनना चाहे तो उसके लिए एक और करना पड़ेगा, तो फिर पूरे यहीं पर रहने का तय कर लें क्या? तो गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। और लोग जो है सब घबरा जाएंगे कि ये तो इनको वहां मन लग गया, मेरा मन पढ़ाई में कैसे लगाऊं, अब बताओ। पढ़ने बैठा करे रोज, नहीं भी मन लगता है, मैंने एक बार और कहा था कि जिन बच्चों का पढ़ने मन नहीं लगता उनको तो और पढ़ना चाहिए, जिस विषय में हम कच्चे हैं उस विषय को तो और पढ़ना चाहिए। अपन कोई अकलंक स्वामी तो है नहीं कि एक बार पढ़ा नहीं और याद हो गया, ना अपन निकलंक स्वामी है कि दो बार पढ़ा और याद हो गया, अपने को तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, नहीं मन लगे तब भी पढ़ेंगे। हम तो कहते किताबों के बीच बैठे रहो, हाँ ऐसे रख करके, हमारी हम प्रशंसा की दृष्टि से नहीं कह रहे, लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे कि उसका भी असर होता है, ऐसा नहीं समझना कि नहीं होता। अपने को जब, क्योंकि पहले टेलीविजन भी नहीं हुआ करता था, घूमने घामने की कोई इच्छा ही नहीं होती थी कि जाएं और सिटी में सुबह से और शाम को घूमने घामने जाएं, नहीं खाली वापस लौटे घर में तो अब क्या करें, मन तो कुछ नहीं लग रहा, तो मैगजीन भी नहीं पढ़ने का शौक नहीं था, ना रेडियो, रेडियो तो मेरे से लगाते नहीं बना अभी तक, मुझे नहीं मालूम विविध भारती कहाँ लगती और फलाना कहाँ रखता, सीलोन कहाँ लगता, हाँ नहीं लगाए नहीं, कोई ने लगा दिया तो सुन लिया, और क्या करना अपने को ज़्यादा। अब ऐसी स्थिति में मैं हमेशा किताब रखी रहती थी, मैं बैठे रहता, नहीं भी पढ़ रहे हैं तब भी अपनी किताबों के पास बैठे हैं, उस पर धूल जम गई तो उसको साफ करो, उस किताब का कवर थोड़ा ठीक नहीं लगा उसको चेंज करो, आधे पौन घंटे इसी में, फिर उसके बाद एक आध किताब में मन लग ही जाएगा। हमसे हमारी दादी अपनी अलमारी साफ करवाया करती थी, मुझे हमेशा याद आ जाता, ज्ञान ऐसे भी आ जाता है, सेवा करने से भी आता है ज्ञान, ऐसा नहीं समझना। ज्ञान का पहला चरण अभ्यास से आता है, दूसरा गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, तीसरा गुरुजनों के प्रति उनकी सेवा, और चौथा विद्या कालेन पच्यते, समय से आती है, बहुत अनुभव होने पर आती है। पर तीन चरण में से एक चरण भरे अभ्यास करने से, बाकी दो चरण तो गुरु की श्रद्धा और गुरु की कृपा और उनके प्रति सेवा का भाव, इससे ही आती है। वो उदाहरण सुनाऊं कि हमको उसमें 5 पैसे बहुत होते थे, 5 या 10 पैसे बहुत हो गए, तो वो दादी हफ्ते में एक आध बार, कौन हमारी अलमारी, उनकी शास्त्र की अलमारी थी, हाँ तो कौन हमारी अलमारी साफ करेगा, हम करेंगे, हाँ करो 10 पैसे देंगे, अरे ठीक है और क्या करना, अपने को हम कर देंगे पूरी। तो बस जल्दी से सब किताबें जमा जमू करके साफ सुथरा करके जमा दी। अब क्या होता था कि वो कोई ना कोई किताब लाती थी, पहले वो गुटका चलते थे ऐसी छोटी सी और उसको ऐसे पढ़ते थे ना ऐसे करके, अब तो ये ऐसी बनने लगी, ऐसे पढ़ते थे, अच्छी लगती थी छोटी छोटी सी किताब, तो फिर अपन ने किताब की अलमारी जमाई, 10 पैसे भी लिए, और फिर धीरे से कोई किताब पसंद आ गई, दादी हम ये दे दें, हाँ दे लो ले लो। वो चाहती ये थी कि एकाध तो धर्म की किताब कोई अच्छी इसको लग जाए, सो ले जाके अपने बस्ते में रखेगा, अपनी टेबल पे रखेगा, कभी तो बुद्धि में आएगा, पलटेगा पलटेगा तो याद हो जाए, बस ये प्रक्रिया। और हमको प्रभु पतित पावन में अपावन याद ही नहीं है किसने सिखाई, याद ही नहीं है, पर वो हमें याद आता है अब कि एक धर्म ध्यान की पुस्तक होती थी, छोटा सा गुटका जिसमें बहुत सारे पाठ करने के लिए रहते थे पुरानी, उसमें से पढ़ी थी, और मंगत राय की 12 भावना तो हमें फोकट में याद हुई थी, हाँ जब हम आचार्य जी के पास आए तो आचार्य जी ने पहले दूसरे दिन पाठ किया मंगत राय की, तो हमने भी साथ में किया, तो और महाराज जी कहने लगे कि आप तो सीधे कॉलेज से आए थे और ये कहां से आपने याद कर ली, हमने कहा हमको भी नहीं समझ में आ रहा, फिर ध्यान आया, बहुत रिकॉल किया तब ध्यान आया कि अरे सवेरे सवेरे जब हम बिस्तर पे पड़े रहते थे इस इंतजार में कि माँ कहेगी कि बन गई चाय उठो तो उठ जाएंगे, उसके पहले जब माँ झाड़ू लगाती थी घर में तब यही तो पढ़ती थी, कहां गए चक्री जंजीता भरत खंड सारा, वो चीज जो है अनकॉन्सियस में बैठती चली गई पूरी, कैसे सुनते रहते थे पड़े पड़े सुनते रहे, और रोज रोज सुनने का ये संस्कार कि जब पढ़ने बैठे तो ऐसा लगा कि ये तो अपने को पहले से ही मालूम, ऐसे भी ज्ञान आता भैया कॉन्टैक्ट में रहने से, किताबों को की इज्जत करने से, सम्मान करने से, दूसरे के ज्ञान की प्रशंसा करने से ज्ञान बढ़ जाता, हाँ ये सब उपाय हैं। इसलिए जिन बच्चों को इस तरह की स्थिति है उनको जरूर से ऐसा प्रयास और अभ्यास करना चाहिए। 6:07 हो गए और इतने सारे क्वेश्चन छोटे छोटे बच्चों ने खूब लिखे हुए हैं, राइटिंग सही लग रहा है, अब क्या करें, नहीं करें कि करें, ये तो बड़ा अजीब सा प्रश्न है। ये तो छोटे छोटे के प्रश्न, एक मिनट में निपटाता हूँ, ये बाकी बच जाएंगे। ये पूछ रहे हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा है कि भगवान महावीर स्वामी का शासनकाल चल रहा है, इसलिए जो भी बहनें लोग हैं, माँ लोग हैं, वो जिनका विवाह हो गया है, उनको अपने घर में जो जिनसे विवाह हुआ उन जीवन साथी की आरती करने का कहीं कोई विधान आता है क्या, ऐसा बताइए। हाँ, ऐसा कहीं किसी ने सुना होगा, पर मैं भी ये पहली बार सुन रहा हूँ। ये तो लिखा हुआ है कि परस्पर एक दूसरे से आत्मीयता और एक दूसरे की विनय, इतना तो लिखा है कि परिवारजनों में जो छोटे हैं वे अपने से बड़ों की विनय करें, सुबह से उनको प्रणाम करें, जय जिनेंद्र करके और दिन शुरू करें। लेकिन आरती का तो इतना ही है कि जब कहीं किसी विशेष कार्य के लिए, विशेष अनुष्ठान के लिए जा रहे हों, तब आरती उतारना। पहले जो है जब युद्ध के लिए जाया करते थे तब जो है जीवन साथी की आरती उतारने का, या कि जब पुत्र विद्या अध्ययन के लिए जाता था और विद्या अध्ययन से लौट के आता था तब पुत्र की भी आरती माँ उतारा करती थी, बहन उतारा करती थी, भाई की। तो ऐसा तो माँ आता है, पर और विशेष मुझे इसके बारे में कहीं देखने में नहीं मिला। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा कहीं कोई विधान रोज का है क्या कि ऐसा आता है। विनय के प्रति तो आता है पर आरती का नहीं। आरती भी अगर उस अर्थ में ले लें, आसमंतात रति इति आरती, देखा तो यही है कि उनके गुणों के प्रति अनुराग होना वास्तव में आरती तो यही है। बाकी तो फिर अपन वो दीपक लेकर के करते हैं, वो तो बहुत बात की चीज़। हमने एक बार बताया था ना, एक पंडित जी आए थे, वो मुझे बता के गए कि बोले सही है महाराज, भगवान के पूरे उससे शरीर से भी अपन का अनुराग है और उनके गुणों से भी। तो पहले क्या करते हैं, उनके मुख की तरफ ऐसे घुमाते हैं तो उनकी मुख मुद्रा दिखाई पड़ती, फिर उसके बाद दूसरी ऐसे करते हैं तो उनके नाभि तक प्रकाश हो जाता, और फिर तीसरे करते हैं तो चरण तक। इस तरह से जो है ऐसे आरती करते हैं तो पूरे पूरे शरीर और उनके समस्त गुणों के प्रति हमारा अनुराग है ये व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए आरती की जाती। तो गुणानुराग तो अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके बारे में कहीं मिलेगा तब मैं आपको बता पाऊँगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और उसमें देर लगेगी, इसलिए इसको छोड़ रहा हूँ। नमोकार मंत्र में ये मैंने कई बार बताया कि अरिहंतानम, अरहंतानम, अरुहंतानम तीनों पाठ सही हैं। धवला जी की पहली पुस्तक में इन तीनों की व्याख्या भी की है। अरिहंत वो कहलाते हैं जिन्होंने अपने चार घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया, और अरहंत तीनों लोक में जो पूज्य हैं वे अरहंत हैं। बात एक ही है, सिनोनिम्स हैं ये, और अरुहंत अर्थात जिनका जन्म मरण नहीं होगा। कितनी तीनों विशेषताएं हैं, चार घातीय कर्म नष्ट कर दिए हैं, तीनों लोक में पूज्य हैं और जन्म मरण से मुक्त हो गए हैं। इन तीनों के लिए तीन शब्द अलग अलग हैं, अरिहंतानम, अरहंतानम, अरुहंतानम, ये तीनों ठीक हैं। और नमो कारो और नमो यारो, इसमें से प्राचीन नमो यारो है, और परमम हवई मंगलम और परमम होई मंगलम में से परमम होई मंगलम प्राचीन पाठ है, बाकी जो है हवई मंगलम ये बाद को प्राकृत की दृष्टि से लिख दिया गया। ये हो गया। मुनि महाराज के मूल गुण किसे कहते हैं, जो नियम से उनको पालन करना है वो मूल गुण कहलाते हैं। माने मेन सब्जेक्ट और ऑप्शनल माने कंपलसरी सब्जेक्ट कि भाई ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, और बाकी ऑप्शनल हैं, चाहिए आपको कि इसमें से ये करना चाहें तो 12 तप हैं, 10 धर्म हैं, 22 परिचय हैं, ये सब उत्तर गुण कहलाते हैं। और बाकी 5 महाव्रत हैं, 5 समिति हैं, 5 इंद्रिय विजय हैं, आवश्यक हैं, 7 शेष गुण हैं, वो सब 28 मूल गुण मुनि महाराज के कहलाते हैं। इतनी चर्चा समय जो है वो भाव जगत में सब जीवों से Thank you.
Thank you.